नमस्कार भारत, 14 जुलाई दिन शनिवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे नवाज शरीफ, समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान के चुनावों पर कितना पड़ेगा असर?
अब देखना ये है कि ये दोनों पार्टी जो हैं वो इस अरेस्ट को और इस जेल टर्म को किस तरह से अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और विवेचना में आज इंदिरा गांधी के दौर में दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाने वाले पीएन हक्सर की कहानी।
मई 67 से लेकर जनवरी 73, 5.5 साल में जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया उसमें हक्सर साहब का हाथ था।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत कौर से। भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद वतन वापस लौटे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाज शरीफ को रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया है, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज जेल में तब्दील किए गए इस्लामाबाद के सिहाला रेस्ट हाउस में रहेंगी। इस बीच लाहौर में शरीफ के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक चुनावी रैली में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 128 हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन धमाकों में बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता नवाजजादा सिराज रईसानी की मौत हुई है। हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप का षड्यंत्र रचने के आरोप में 12 रूसी खुफिया अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा कि इस फैसले का असर सोमवार को होने वाली अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर नहीं पड़ेगा और दोनों के बीच तय योजना के तहत ही फिनलैंड के हेलसिंकी में मुलाकात होगी। रूस के 12 खुफिया अधिकारियों पर 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारियों के कंप्यूटर हैक करने और 5,00,000 मतदाताओं का डेटा चोरी करने का आरोप है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को इनकार किया है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरमैन टॉम फेरेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा,
President Trump should absolutely cancel this meeting with Putin on Monday.
राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन के साथ प्रस्तावित वार्ता रद्द कर देनी चाहिए। पुतिन लोकतंत्र पसंद नहीं है और ना ही अमरीका के दोस्त हैं। ये मुलाकात हमारे लोकतंत्र और अमरीका की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये थे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरमैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के खिलाफ स्कॉटलैंड और सेंट्रल लंदन समेत कई जगहों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों में बड़ी तादाद में शामिल हुए लोगों ने अमरीका में प्रवासियों के साथ हो रहे बर्ताव की आलोचना की। ट्रंप फिलहाल ब्रिटेन में हैं। वो स्कॉटलैंड स्थित अपने टर्नबेरी गोल्फ रिजॉर्ट में वीकेंड मना रहे हैं। ट्रंप के वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही रिजॉर्ट के ऊपर से एक पैराग्लाइडर गुजरा जिसके हाथ में एक बैनर था। इस बैनर पर ट्रंप के विरोध में नारा लिखा हुआ था। ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा, हमारी सरकार को लगता है कि हमें एक दोस्त और सहयोगी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार बेहद कमजोर स्थिति में है। आपने उन्हें यहाँ बुला लिया, इसके बजाय आपको उन्हें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। जो आप नहीं कर रहे वो हम आकर कर रहे हैं। ये थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध प्रदर्शन में शामिल एक महिला के शब्द। प्रवासियों से भरी नाव को लेकर एक बार फिर इटली और माल्टा के बीच विवाद हो गया है। माल्टा का कहना है कि भूमध्य सागर में फंसी 450 प्रवासियों से भरी लकड़ी की नाव इटली के एक द्वीप पर रुकना चाहती है, लेकिन इटली के गृह मंत्री मातेओ सल्विनी ने जोर देकर कहा कि माल्टा इन प्रवासियों को अपने यहाँ शरण दे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। पाकिस्तान में चुनाव में महज 11 दिन बचे हैं और हालात अस्थिर होते जा रहे हैं। कल पाकिस्तान में दो अलग अलग चुनावी रैलियों में बम धमाके हुए, जिसमें बलूचिस्तान में हुए धमाके में कम 128 लोगों की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक अन्य धमाका खैबर पख्तूनवा के बन्नू शहर में हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन शुक्रवार का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक खास वजह से चर्चा में रहा। ये आवाज़ें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उन समर्थकों की हैं जो कल लाहौर की सड़कों पर विदेश से लौट रहे अपने नेता के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन करने उतरे थे। पाकिस्तान की एक अदालत की ओर से भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुनाए जाने के एक हफ्ते बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ कल अपने वतन लौटे और लाहौर हवाई अड्डे पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से उन्हें एक विमान में रावलपिंडी की अडियाला जेल ले जाया गया। इस दौरान भारी संख्या में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के समर्थकों ने हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। इस रैली में नवाज और उनकी बेटी के पक्ष में क्या नारे लगे, सुनिए। कल खासी संख्या में नवाज समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। देर रात समर्थकों की सुरक्षा बलों से झड़प की खबरें भी आईं। बीबीसी संवाददाता फरहत जावेद ने नवाज समर्थकों की आवाजें भेजी।
नाम क्या है आपका?
मलक शाहिद।
तो मलक शाहिद, ये क्या आप बना के लाए हैं?
ये सरगोधा से आया जी, ये मियाँ साहब की मोहब्बत में ये टिशू का डब्बा गाड़ियों के लेके, ताकि गाड़ी के अंदर ये 8-10 दिन पड़ा रहे, कोई इसको फेंके ना। ये अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है मियाँ साहब की खातिर।
अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई है। जब ये सज़ा सुनाई गई तब पिता पुत्री लंदन में थे। अपने देश रवाना होने से पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के पत्रकारों से फ़ोन पर बात करते हुए आगामी चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
पाकिस्तान को मैदान जंग बनाया हुआ है, जबकि इलेक्शन 10 दिन के बाद है। कभी देखिए आपने ऐसी सूरत हाल दुनिया के किसी मुल्क में? तो ये इस तरह के नक्शे सिर्फ पाकिस्तान ही पेश कर सकता है। ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बाकी सूबों में तो किसी में इस तरह के हालात नहीं है। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कारकुनों को पकड़ा गया है और फिर जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऊपर सर पे इलेक्शन खड़ा है, और क्या कौन सी गैर कानूनी काम किया इन्होंने जो इनके रास्ते को रोका जा रहा है? तो ये अपना, मैं समझता हूँ कि क्या क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शन की।
नवाज शरीफ का आरोप है कि सियासी कारणों से देश की प्रभावशाली सेना उन्हें फंसा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लाहौर, जहां मौजूद हैं बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता फरहत जावेद। फरहत, क्या नवाज और मरियम दोनों अब भी अडियाला जेल में ही हैं? हम ये सुन रहे थे कि मरियम को किसी रेस्ट हाउस में अलग ले जाया जाएगा। क्या मरियम अब भी अडियाला जेल में ही है?
जी बिल्कुल, हमारे पास जो अब तक की जो लास्ट इन्फॉर्मेशन आई है उनके मुताबिक मरियम और नवाज शरीफ दोनों को फिलहाल अडियाला जेल में ही रखा गया है। इससे पहले जो कोर्ट की तरफ से जो पहले एक ऑर्डर दिया गया था, उसके मुताबिक मरियम को सिहाला, जो कि एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे लेके जाया जाना था, जबकि नवाज शरीफ को अडियाला जेल लेके जाया जाना था। लेकिन उसके बाद कुछ हमने इनके प्लान में तब्दीली देखी, जिसके मुताबिक मरियम और नवाज दोनों को अडियाला जेल लेकर जाया गया, जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, और उस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही मरियम को सिहाला शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी दोनों जो है वो अडियाला जेल में ही मौजूद हैं।
और आज इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या नवाज शरीफ के वकील आज ऊंची अदालत में अपील दाखिल कर सकते हैं, या जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं लाहौर में वो और बढ़ सकते हैं?
जो लाहौर में जो प्रोसेशन हो रहा था वो तो कल रात को ही खत्म हो गया था। वो एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये प्रोसेशन जो है ये एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका था। उससे पहले ही नवाज शरीफ को और मरियम को लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा चुका था। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जो लॉज हैं उनके मुताबिक कोई भी अपील करने के लिए उस शख्स का खुद मौजूद होना जरूरी होता है, और यही वजह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। इसलिए ये पॉसिबल है कि आज ही वो कोर्ट में अपील करेंगे उनके लॉयर, और वो खुद भी कोर्ट में उनका होना जरूरी होगा, तो ये इम्कान है कि आज कोर्ट में उनकी अपील होगी, जिसके बाद वो हो सकता है कि बेल की भी एप्लीकेशन कोर्ट में दें।
बहुत शुक्रिया फरहत जावेद, हमसे जुड़ी थी सीधे लाहौर से। इस पूरे घटनाक्रम का सियासी असर क्या हो सकता है, यही समझने के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूखी से।
देखिए, आने वाले दिनों में जो चैलेंज है नवाज शरीफ की पार्टी के लिए भी और इंतजामिया के लिए भी और उनके मुखालफीन के लिए भी, वो है 25 जुलाई का इलेक्शन। अब देखना ये है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं वो इस अरेस्ट को और इस जेल टर्म को किस तरह से अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ जो हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए उनकी बेटी को, और उनको जमानत के लिए वो दरख्वास्त दें तो वो उस मौके पे उनको जेल में से लाया जाए अदालत में, तो वो उस मौके पे उनके लिए एक अच्छी पब्लिसिटी का मौका होगा।
जी, और चुनावों के मद्देनजर ही अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, क्या इस तरह की चर्चाएं हैं कि जो कुछ हो रहा है वो पीटीआई के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है?
जो हालात इस मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं उसमें बहुत वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पीटीआई को सपोर्ट मिल रही है किसी न किसी क्वार्टर की तरफ से। नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं, उनके बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए, सिर्फ लाहौर में आज नहीं, इससे पहले पिंडी में भी और इधर उधर भी। पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको कैंपेनिंग करने दी जा रही, उनके लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी जो एक और नवाज शरीफ की हामी जमात है, उसके पार्टी के लीडर पे दो दिन पहले साइड अटैक हुआ और उनका कैंडिडेट उसमें हलाक हो गया। सिर्फ पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसको इस तरह की किसी मुश्किल का सामना नहीं है, ना उनको टेररिस्ट थ्रेट है, ना उनको इंतजामिया की तरफ से रोक टोक है। तो अब कहना मुश्किल है कि नतीजा क्या निकलेगा 25 जुलाई को, लेकिन बहुत क्लियरली लेवल प्लेइंग फील्ड इस दफा पाकिस्तान में इलेक्शन में अवेलेबल नहीं है सब कंटेस्टेंट्स को।
क्या इस बात का कोई ठोस आधार है कि जिस तरह से उनकी पार्टी ने रैली की, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखा करके एक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तबका तैयार भी हो रहा है जिसे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हो रहा है?
देखिए, अगर नवाज शरीफ को ये जरा भी शक होता कि उनके पाकिस्तान जाने से उनको सिंपथी नहीं मिलेगी या सियासी फायदा नहीं मिलेगा तो वो कभी पाकिस्तान ना आते। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि लंदन की एक आरामदेह जिंदगी छोड़ के और जेल में आकर जिंदगी गुजारे? जाहिर है उनको नजर आ रहा है कि कोई उनको सियासी फायदा हो रहा है, लेकिन क्या वो सियासी फायदा 25 जुलाई को वोट्स में ट्रांसफर होगा या उनकी सीटें ज्यादा बन जाएंगी या वो हुकूमत बना लेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है।
ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूखी। और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का, और आज हम आपको अखबारों के हाल भी पाकिस्तान से ही सुनवाएंगे। सीधे चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे सहयोगी एहतिशाम उल हक मौजूद हैं। एहतिशाम, पाकिस्तान के अखबारों में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को किस तरह से कवर किया गया है, ज़रा शीर्षक वहाँ के बताएं आप, क्या क्या शीर्षक लगे?
देखिए जी, शीर्षक तो सारे बड़े अखबारों के अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, सब नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेजी का बड़ा अखबार है डेली डॉन, ये लिखता है नवाज शरीफ मरियम अरेस्टेड बाय नैब शिफ्टेड टू डियाला जेल। फिर एक और खबर इसके साथ थी, पीएमएल वर्कर्स रैली इन सपोर्ट, और साथ नवाज शरीफ का बयान है नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। फिर उर्दू का बड़ा अखबार है जी जंग, ये लिखता है नवाज शरीफ मरियम नैब की तहवील में नवाज शरीफ। दूसरी खबर है नवाज शरीफ मरियम नवाज के जेल ट्रायल का हुक्म। फिर अंग्रेजी का एक और बड़ा अखबार है जी, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आता है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये लिखता है नवाज मरियम सेंट टू अडियाला जेल आफ्टर रेस्टेड एट लाहौर एयरपोर्ट। इसके साथ ही एक अफसोसनाक खबर भी है बड़ी, आज वो भी है जी, मस्टोंग मैसेकर 128 मार्टेड ओवर 200 इंजर्ड ब्लास्ट क्लेम बाई इस्लामिक स्टेट। इसी तरह दुनिया अखबार है, डेली एक्सप्रेस उर्दू का है जी, फिर डेली टाइम्स है, बिजनेस रिकॉर्डर है, अंग्रेजी का दी नेशन है, सब अखबारों में नवाज शरीफ साहब के लंदन से वापसी पे, उसकी अरेस्ट पे और उनकी बेटी के साथ अडियाला जेल में मुंतकली और किस तरीके से उनका जेल में ट्रायल होगा, ये सारी खबरें आज इसी से भरी पड़ी हैं जी।
जी, बहुत शुक्रिया है तिशा मुलक, अखबारों की समीक्षा कर रहे थे इस्लामाबाद से।
बीबीसी इंडिया बोल्ड। ताजमहल के प्रति सरकार की बेरुखी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में केंद्र सरकार से कहा, नहीं बचा सकते तो गिरा दें ताजमहल को। क्या मुगलिया इमारत की वाकई किसी को परवाह नहीं? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 14 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब आज की विवेचना। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के सचिव रहे परमेश्वर नारायण हक्सर को उस जमाने में इंदिरा गांधी के बाद भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली शख्स माना जाता था। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की सभी सफलताओं के पीछे हक्सर का हाथ था। हाल ही में जयराम रमेश की एक किताब प्रकाशित हुई है, इंटरवाइंड लाइव्स पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी, जिसमें उन्होंने इन दोनों के संबंधों का रोचक विश्लेषण किया है। विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं पीएन हक्सर के जीवन के दिलचस्प प्रसंगों पर।
इंदिरा गांधी के जमाने में मशहूर कश्मीरी माफिया का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कोई कैबिनेट मिनिस्टर या चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ नौकरशाह था। उनका नाम था परमेश्वर नारायण हक्सर। 1967 में जब वो ब्रिटेन में भारत के उप उच्चायुक्त थे, इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना सचिव नियुक्त किया था। बहुचर्चित किताब इंटरट्वाइंड लाइव्स पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी लिखने वाले जयराम रमेश बताते हैं,
लेफ्टिस्ट विचारधारा से वो जुड़े हुए थे, पर वो डिप्लोमेट थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में उनको शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने उनको इलाहाबाद से बुलाया। वो तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ काटजू जैसे महान वकीलों के साथ काम कर रहे थे। 6 मई 1967 में इंदिरा गांधी ने उनको अपना सचिव बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो उनका सचिव ऐसा हो जिनके साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ते हो, पर एक डेफिनेट आइडियोलॉजी भी हो। वो नई नई प्रधानमंत्री थी। जो हम आज इंदिरा गांधी के बारे में सोचते हैं, पहले 2.5 साल में दिखाई नहीं देता था। वो बोलती ज़्यादा नहीं थी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, कोई जानते नहीं थे। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े महान लोग थे, कामराज, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, निजलिंग अप्पा, वाई बी चौहान, संजीव रेड्डी, वो सोचते थे कि क्या औरत आई है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, क्या कर पाएगी, वो हम इनको कंट्रोल करेंगे, यही उनके मन में था। तो इन हालात में, इन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने हक्सर को अपना सचिव बनाया। और मुझे पूरा विश्वास है इन 5.5 सालों में, यानी कि मई 1967 से लेकर जनवरी 1973, 5.5 साल में जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया, उसमें हक्सर साहब का हाथ था। और हक्सर साहब का एक खूबी थी कि वो इंदिरा गांधी को सीधा बोल देते थे, नहीं आप गलत कह रही हैं, आप गलत कर रही हैं।
1969 से लेकर 1973 तक इंदिरा गांधी ने जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनके पीछे परमेश्वर नारायण हक्सर का हाथ था।
1972 तक हक्सर साहब पर बहुत निर्भर करती थी। 1971 में बांग्लादेश के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, शिमला समझौता जुलाई 1972 में एक कदम नहीं उठाई। और जब अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, इंडो सोवियत ट्रीटी जो हुआ, उसमें भी हक्सर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। 5.5 साल में बिल्कुल साफ है कि इंदिरा गांधी ने एक कदम नहीं ऐसा लिया जहां अक्सर साहब का परछाई नहीं हो, अक्सर साहब का हाथ ना हो, और अक्सर साहब ने कहा ना हो इंदिरा जी को कि ये करिए वो भी। वो सलाहकार थे। इंदिरा गांधी के बिना अक्सर संभव नहीं थे। अक्सर साहब कोई स्वयंभू नहीं थे, वो कहीं से आर नहीं टिपके। इंदिरा गांधी ने उनको बनाया, इंदिरा गांधी ने उनको अपने साथ बिठाया, इंदिरा गांधी ने उनको अधिकार दिया। इंदिरा गांधी और हक्सर साहब के बीच में जो जुगलबंदी थी, बहुत बढ़िया जुगलबंदी थी। जब इंदिरा गांधी माउंट एवरेस्ट पर जा पहुंची 1971 में, पहले चुनाव में उनको 2/3 बहुमत मिला, बाद में बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हुआ दुनिया भर में, और दिसंबर के महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दुर्गा आप तो दुर्गा हो, तो इस सब में हक्सर साहब का हाथ है।
हक्सर एक चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक थे, पढ़े लिखे थे, मजाकिया थे, और उन्हें बातचीत करने का गजब का सलीका था। हक्सर का ही बूता था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय को कैबिनेट सचिव के कार्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो न सिर्फ अपने जमाने में भारत के सबसे ताकतवर नौकरशाह थे बल्कि इंदिरा गांधी के बाद भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी थे और उनकी इस ताकत का कारण इंदिरा गांधी नहीं थी। अक्सर के समय प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन बताते हैं,
जब तक वो रहे तो उनका पूरा कंट्रोल था, ऑफिस में सब बातें जानते थे और इतने सहज स्वभाव के थे कि कुछ बात होगी पीएम से मिलकर लौट रहे हैं, मेरे कमरे में रुक जाएंगे, बिशन कॉफी मंगवाओगे, इतना सहज स्वभाव था उनका और हर चीज पे वो मदद करने को तैयार रहते थे, आपकी बात सुनने को तैयार रहते थे, आपकी गलती हो तो आपको बता देते थे कि गलती है, आपको अगर सहमत होते थे तो कहते थे बिल्कुल ठीक है तुम इसी पर डटे रहना। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पीएम ने हमसे कहा कि भाई आप जरा एक वो बनाइए कैबिनेट रिशफल के प्रपोजल्स, दो चार चीज़ें उन्होंने बता दी, तो मैंने पीएम को बना के हिसाब इसका ये है, इसके डिपार्टमेंट में ये है, ऑल उसकी बेसिस पे। तो जब उन्होंने नोट वोट पढ़ लिया, सुबह में मिला उनसे तो कहने लगे हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बोले कि आपने इनको तो इसमें कहीं रखा ही नहीं, इनको आप इनको मंत्री बनाएंगे? कहने क्यों? मैंने कहा कि साहब मैं तो इन्हें इसकी उपयुक्त नहीं समझता हूँ, इतने योग्य नहीं समझता हूँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए इसका राजनीतिक पहलू ये है, इसमें मुझे ये ज़रूरत है, ये है, ये कुछ गरम गरम बातें हो रही थी। इतने में हक्सर साहब ने कबाड़ खोला, उनका ये ख्याल था कि हक्सर साहब उनको सपोर्ट करेंगे उस व्यक्ति के बारे में। उनका देखिए टंडन जी इनको मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। ही इज ऑफ कोर्स वेरी राइट, why you want him to be, then wind up your proposal for cabinet reshuffle and forget about it. इस तरह के आदमी थे।
1971 के युद्ध के दौरान कूटनीति के मैदान में पीएन हक्सर का मुकाबला अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से था और इसमें कोई संदेह नहीं कि हक्सर किसिंजर पर भारी पड़े थे। 1986 में अमेरिका में रूस के राजदूत रहे अनाटोली डॉब्रिनिन को पीएन हक्सर से जब मिलवाया गया तो उनके पहले शब्द थे ग्लैड टू मीट द मैन हु आउटविटेड हेनरी किसिंजर।
हक्सर साहब ने डॉब्रिनिन को कहा डू आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नो ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। नहीं, 1971 में जब इतिहास लिखा जाएगा और कई लोगों ने किताब भी लिखा है, रिचर्ड निक्सन और किसिंगर की भूमिका बहुत नकारात्मक थी, बहुत भारत के नज़रिए से बहुत नकारात्मक था और उन्होंने कुछ समर्थन नहीं दिया, कुछ सहानुभूति भी नहीं प्रकट की, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं था। किसिंजर यहाँ आए, अक्सर साहब से लंबी बातचीत हुई, अक्सर साहब इंदिरा जी के साथ गए नवंबर में, वॉशिंगटन में बातचीत हुई। पर मैं कह सकता हूँ कि किसिंगर के जीवन में अगर एक व्यक्ति है जिन्होंने किसिंगर को बुद्धू बनाया वो अक्सर साहब है। और 1971 में किसिंजर और निक्सन सबसे, अगर आप देखें, बहुत लोग कहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी महान कारनामे हैं, चीन के साथ उन्होंने संबंध रिश्ते किए, रूस सोवियत संघ के साथ उन्होंने समझौता किया, पर हिंदुस्तान के मामले में वो मार खा गए। अगर एक आदमी ने किसिंगर को मार खिलवाया वो अक्सर साहब थे।
इंदिरा गांधी को अक्सर के घर में बने कोफ्ते बहुत पसंद थे। अक्सर जब उनका दिल चाहता तो वो उसकी फरमाइश करती। उनका ख्याल था कि ये कोफ्ते अक्सर का खानसामा बनाता था। वास्तव में ये कोफ्ते अक्सर अपने हाथों से इंदिरा गांधी के लिए खुद बनाया करते थे। अक्सर का इंदिरा गांधी से मनमुटाव का कारण था संजय गांधी। अक्सर का मानना था कि संजय के मारुति प्रोजेक्ट के कारण इंदिरा गांधी की काफी बदनामी हो रही है। पीएन अक्सर की बेटी नंदिता अक्सर बताती है,
उस वक्त तक संजय गांधी काफी बड़े हो चुके थे, उनकी कुछ राय थी, उनकी कुछ पॉलिटिक्स भी थी, तो पापा इंदिरा जी को मना करते रहते थे कि भाई इस पे जरा रोक लगाओ, और उनको शायद बुरा लगा या संजय को बुरा लगा। तो जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई उस दिन जितनी बार एआईआर में इमरजेंसी डिक्लेयर ही उससे ज़्यादा था कि पापा के चाचा जो थे पंडित ब्रदर्स में कनॉट प्लेस में उनकी दुकान थी, वो 80 साल के थे, उनको अरेस्ट करके ले गए थे पुलिस स्टेशन। फिर वो हमारी बुआ के पास आए उनको अरेस्ट करने, पुप्पा जी के पास आए, माँ के पास भी आए। तो उस वक्त इस तरह का माहौल हो गया था कि कोई माने एक दिन तो वो बहुत सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट माने जाते थे और अगले दिन कोई वकील इनका केस करने को तैयार नहीं था।
दिलचस्प बात ये थी कि जब हक्सर के चाचा के साथ ये सलूक हो रहा था, हक्सर योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और इस हैसियत से इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुआ करते थे। किसी भी चीज का विश्लेषण हक्सर से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। उनका रौब ऐसा था कि कई बार तो उनके कमरे में घुसते ही मंत्री भी उठकर खड़े हो जाया करते थे। अल्लामा इकबाल का एक शेर वो अक्सर गुनगुनाते थे, यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आज की विवेचना आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब खेल के समाचार बता दें, विंबलडन में कल पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन अमेरिका के जॉन स्नेर को 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24 से हराकर फाइनल में पहुंच गए। वहीं क्रिकेट में आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। और अब आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिन्हें अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की 18 वर्षीय हिमा दास के कोच होने का गौरव हासिल है। ट्रैक स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण दिलाने वाली हिमा दास के कोच निपुण दास से बात की हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने।
2017 जनवरी वो कैंप में आए थे यहाँ पे गुवाहाटी में, हमने देखा कि वो लड़की थोड़ा एक्सेप्शनल है हर चीज में, तो ये देख के हमने उनको बोला कि तुम कहाँ प्रैक्टिस करता है, बोला कि गांव में, उसका गांव नौगांव धींग में है। तो मैंने बोला कि तुम वहाँ पे प्रैक्टिस करता है मतलब हर साल कर सकता है कि कोई जब बारिश होता है कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रैक्टिस कर सकता है, बोला नहीं सर बारिश होने से तो मुश्किल है क्योंकि हमारा फील अच्छा नहीं था। तो हमने बोला तुम एक काम करो गुवाहाटी में आ जाओ, गुवाहाटी में आ जाओ यहाँ पे मतलब पूरा साल प्रैक्टिस कर सकता है, सिंथेटिक ट्रैक है।
अच्छा, फिर आप उसको उसके गांव से यहां ले आए गुवाहाटी?
गुवाहाटी लेके आए, पहले तो फुटबॉल खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी इधर उधर, फुटबॉल खेलने जाता 100 रुपया 200 रुपया मिलता है वही उसका ये है। तो बाद में पूरा एथलेटिक्स में उन्होंने इंटरेस्ट दिया, गुवाहाटी में लेके आया उसको, रहना खाना पीना सब कुछ हमने दे दिया, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट हुआ उसका नेशनल कंपटीशन।
निपुण दास जी, जैसे शुरुआत में तो हिमा है वो काफी पीछे भी चल रही थी मतलब शुरुआती 2-3 लैप में, तो लेकिन उसके बाद लास्ट में बिल्कुल ऐसे तेजी से पकड़ी, क्या मतलब खास ट्रेनिंग थी इसकी?
हर 400 मीटर कंपटीशन में उनका एशिया होता है, 200 में भी एशिया होता है, जो कार्ब ना कार्ब में उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन स्टेट में वो बराबर कर देते हैं। तो हमको पता था, लेकिन हमको ये जो कार्ब रेस है ना जब पीछे थी वो 4 नंबर में थी, अब तो लास्ट 300 तक वो 4th पोजीशन में थी, तो उसके बाद हमको मेरे को पता है कि वो गोल्ड मेडल लेके लेगा क्योंकि लास्ट 100 मीटर उसका इतना अच्छा होगा ना, अच्छा होती है, मेरा तो कॉन्फिडेंस था कि वो गोल्ड मेडल मानेगा।
और उनके जीतने के बाद आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा उसके बाद?
और बोला नहीं सर मैं दिखा दिया है।
बिल्कुल, ये थे हिमा दास के कोच निपुण दास। और विवेचना की तारीफ में फेसबुक पर बहुत सारे श्रोता हमारे कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, विवेचना अच्छी लगी, एक आदमी और असरदार था इंदिरा गांधी जी का, वो उनका नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। इन पर भी कभी हो सका तो विवेचना आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए गुरप्रीत कौर से।
बीबीसी समाचार। भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद वतन वापस लौटे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक चुनावी रैली में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 128 हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप का षड्यंत्र रचने के आरोप में 12 रूसी खुफिया अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा कि इस फैसले का असर सोमवार को होने वाली अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के खिलाफ स्कॉटलैंड और सेंट्रल लंदन समेत कई जगहों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रवासियों से भरी नाव को लेकर एक बार फिर इटली और माल्टा के बीच विवाद हो गया है। माल्टा का कहना है कि भूमध्य सागर में फंसी 450 प्रवासियों से भरी लकड़ी की नाव इटली के एक द्वीप पर रुकना चाहती है, लेकिन इटली के गृह मंत्री ने जोर देकर कहा है कि माल्टा इन प्रवासियों को अपने यहाँ शरण दे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचा रही थी मीना कोटवाल। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।